वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद सातवां अध्याय विदुर के अन्य प्रश्न। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्ट पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ऋषियों में प्रधान मैत्रेय जो भगवान की कथाओं के वर्णन करने के लिए सदैव सोत्साह तत्पर रहते थे, विदुर द्वारा प्रेरित होकर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। वे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए अत्यंत उत्साहित हो उठे थे। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे मनीषी महर्षि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने के विषय में सदैव अत्यंत उत्साहित रहते थे, विदुर के द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए इस प्रकार प्रेरित होने पर मैत्रेय मुनि मुस्कुराते हुए प्रतीत हुए, क्योंकि वे दिव्य आनंद का वास्तविक अनुभव करने लगे थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध विदुर के अन्य प्रश्न शीर्षक नामक सातवें अध्याय पर भक्ति वेदांत भाष्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो विदुर जी ने कई प्रकार के प्रश्न किए हैं और प्रश्न समाप्त करने के पश्चात मैत्रेय मुनि अब प्रश्न देने के लिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इन प्रश्नों को सुनकर जब मैत्रेय मुनि को उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ तो बहुत प्रेरित हो गए और आनंद की अनुभूति करने लगे। वास्तव में ये प्रश्न जवाब प्रश्नोत्तर का जो तरीका है इन्हीं से शास्त्र बनाए गए हैं। शास्त्रों में आप देखेंगे तो केवल प्रश्नोत्तर ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, पुराण हो या अन्य उपनिषद भी हो। ज्यादातर हम देखते हैं कि ये केवल सवाल और जवाब हैं। इस संसार में सब जगह सवाल जवाब भरे हुए हैं, हर जगह जहां भी आप देखेंगे वहां प्रश्न उत्तर चल रहा है। प्रभुपाद जी एक सुंदर तात्पर्य में इसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से हर जगह संसार में प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सुबह सुबह ऐसे चिड़िया भी हम आवाज सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, भोजन कहाँ है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा घोंसला कैसे है, प्रश्न चल रहे हैं। और फिर अपने घोंसले से चले जाते हैं, शाम के समय वापस लौट के आते हैं, फिर से प्रश्न उत्तर चालू रहते हैं, ये कहां है, वो कहां है। और पशु पक्षी मनुष्य सब प्रश्नोत्तर में लगे हुए हैं, और मनुष्यगण यहां स्कूलों में कॉलेज में सब प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। वहां मंत्री लोग लोकसभा राज्यसभा में भी प्रश्नोत्तर करते रहते हैं, जनसाधारण भी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, अब चुनाव में कौन आएगा, क्या होगा। और जो व्यवसाय व्यापारी लोग हैं वो भी अपने अलग अलग बाजारों में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, इसका भाव क्या है, कितना घाटा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और हर प्रकार के लोग जो है प्रश्नोत्तर ही कर रहे हैं। जीवन भर बचपन से लेकर मृत्यु तक प्रश्नोत्तर ही चल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं सारे जीवन भर भी प्रश्नोत्तर करने के बावजूद कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसे प्रश्नोत्तर करने के बाद भी हृदय में आनंद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम जो सवाल जवाब कर रहे हैं वो ये केवल संसार से संबंधित है, लेकिन शास्त्र में बताया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, तो इस संसार के परे जो चीज है परम सत्य भगवान के बारे में प्रश्न करने चाहिए। जब मुनिगण नैमिषारण्य पे एकत्र हो जाते हैं और सूत गोस्वामी जी से कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो सूत गोस्वामी भी प्रेरित हो जाते हैं, जिस प्रकार मैत्रेय मुनि यहाँ विदुर जी के प्रश्नों से प्रेरित हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं, उसी प्रकार से सूत गोस्वामी भी प्रेरित हो जाते हैं और कहते हैं मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोक मंगलम् यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। वो कहते हैं कि मुनिगण मुनयः साधु पृष्टोऽहम्, साधु साधु बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। साधु साधु मतलब जब साधु समाज में कोई अच्छी बात कहता है, कोई अच्छे प्रश्न कहता है या प्रवचन में कोई अच्छी बात बोल देता है तो फिर सब लोग कहते हैं साधु साधु साधु। ऐसे लोग बोलते हैं ना, वेल डन, वेल सेड बोलते हैं ना, शाबाश शाबाश, वैसे तो साधु समाज की भाषा है साधु साधु। तो सूत गोस्वामी कहते हैं मुनयः साधु पृष्टः, पृष्टः मतलब प्रश्न किए हैं आपने हमसे अहम्, और अच्छे प्रश्न क्यों किए हैं, क्योंकि यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, ये कृष्ण से संबंधित है, इसलिए भवद्भिः लोक मंगलम, ये सारे जन समाज के कल्याण के कल्याण का कारण है, ये जन कल्याणकारी ये प्रश्न है, ये सारे समाज के सारे दुनिया का भला होगा ऐसे प्रश्नों से। और इतना ही नहीं, ये न आत्मा सुप्रसीदति, हमारी जो आत्मा है वो संतुष्ट हो जाएगी। तो पूरी तरह से हमें अगर संतुष्टि चाहिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सवाल जवाब करने चाहिए। अभी लोग संसार में ये जो मूल सिद्धांत है इसको भूल रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार के सवाल जवाब करते हुए संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। वास्तव में कृष्ण भगवान हमारे सबसे निकट के स्वामी हैं, प्रभु हैं, मित्र हैं, पति हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं। जो भी संबंध हम इस संसार में ढूंढना चाहते हैं वो श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ये सब कुछ है हमारे, तो अगर हम कृष्ण के प्रति सवाल जवाब करना शुरू करेंगे तो हमारे हृदय वास्तव में संतुष्ट हो जाएगा। यह तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में क्या है, केवल कृष्ण के संबंध में जो भी सवाल जवाब हैं उसको श्रीमद् भागवत प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र रति क्वचित। कि ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवतम इष्यते, ये सारे वेदांतों का सार है, सर्व वेदांत सारम ही। और ये होने के नाते जो भी व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत के रस का पान करता है, तद रसामृत पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, तृप्तस्य। और ऐसे जब तृप्त हो जाता है, न अन्यत्र और किसी भी स्याद और किसी भी शास्त्र में न रति क्वचित, किसी भी समय रति या उसको आकर्षण या स्वाद उसमें नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के अमृत का पान किया है तो उसके लिए कोई दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। यही बात को श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में भी बताया गया है, महामुने कृते किम वा परे ईश्वरत, कि जब ये श्रीमद् भागवत है जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की है तो और कोई भी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। क्यों श्रीमद् भागवत को इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि ऐसे शास्त्र में केवल श्री हरि और श्री हरि के भक्तों की चर्चा की गई है और नहीं। एक बार राधा गोविंद महाराज अभी हम कुरुक्षेत्र में गए थे तो ये प्रश्न किसी ने उनको किया था। वो बोल रहे थे क्लास में कि किसी ने उनसे प्रश्न किया कि अमुक पुराण में ऐसे बताया गया है कि गणेश जी का जो है गर्दन काट दिया गया था तो उसको किस प्रकार से दूसरा सर मिला। तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया कि क्यों आपको वो सर की आवश्यकता है क्या, क्यों आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। श्रीमद् भागवत या श्री हरि के जो प्रश्नों का जो भी संबंधित है वो आप कीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा वास्तव में रस है। अन्य पुराण जो है कि हाँ वेद व्यास जी ने रची हुई है, लेकिन फिर भी ये जो रस का पान आप नहीं कर पाएंगे अन्य पुराणों में। जो कथा यहाँ श्रीमद् भागवत में बताई गई है, क्योंकि वो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों से संबंधित है, इसलिए इसमें वास्तव में रस का पान हम कर सकते हैं। तो सारे संसार में ये प्रश्नोत्तरों का जो कि पद्धति है, इसको हमें फैलाना है। तो ऐसे प्रश्नोत्तरों से समाज में जो भी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और क्या है राजनीतिक, जो भी अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं हैं, इनका हल हो सकता है केवल ये श्रीमद् भागवत के प्रश्नोत्तर से। और कोई उपाय नहीं चाहिए, केवल ये एकमात्र उपाय है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत के प्रश्नोत्तर से सारे समाज का हित होता है। श्रीमद् भागवत में यह भी बताया गया है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम। प्रच्छकम मतलब जो प्रश्न करने वाला है, वक्तारम मतलब जो बोलने वाला है, और श्रोत्रींस मतलब जो सुनते हैं, त्रीन पुनाति ये तीनों जन शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? यथा तव पाद सलीलम, तव पाद आपके पद कमलों में जो जल है अर्थात गंगा जी, जिस प्रकार से गंगा जी तीन प्रकार के जो लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से जो भागवत की कथा होती है तो उस समय ये तीन प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देती है। वो कौन से हैं? कि वो जो बोलने वाला है, वो जो सुनने वाला है, और वो जो प्रश्न करने वाला है, सभी जो हैं इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें तीनों प्रकार के लोगों को प्रामाणिक होना चाहिए। अगर केवल वक्ता प्रामाणिक हो, या केवल श्रोता प्रामाणिक हो, या केवल प्रश्न करने वाले प्रामाणिक हो, तो नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं तीनों प्रामाणिक होते हैं, श्रोता, वक्ता और जो पूछने वाले हैं वो भी प्रामाणिक होते हैं। जहां तक वक्ता के प्रामाणिक होने का सवाल है, ये तो हम सब समझते हैं, ये तो आसान है समझने के लिए। वक्ता ही खुद अपने जीवन में आचरण नहीं कर रहा हो, उसके अंदर ही कोई जानकारी न हो, तो वो क्या बोल सकता है, ये तो आसान है समझना। लेकिन प्रश्न करने वाले को भी प्रामाणिक होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, कैसे करने चाहिए? प्रश्न करने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए
जो भगवत कथा का रस को जो है वो बाहर और निकालें और रस का पान सबको और हो। ऐसा नहीं कि काटने वाले प्रश्न हो, काटने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए भगवत कथा में, केवल रस को और जो है बाहर लाने के लिए ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रभुपाद जी एक विगत तात्पर्य में बताते हैं कि जो प्रश्न होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि केवल प्रश्न भी सुनने लायक हो। अभी हम सुनते हैं कि ये प्रश्नों के जवाब जो हैं इनमें रस का पान करना चाहिए, है ना, कि उत्तर जो है इतने अच्छे होते हैं कि ये रसामृत होते हैं, रस के भरे हुए होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं उत्तर ही नहीं, केवल प्रश्न ही इतने सुंदर होते हैं कि केवल प्रश्न ही सुनने लायक होते हैं। अगर केवल प्रश्न ही सुनते रहें आप सारे दिन भर उसको सुनते रहेंगे, ये इतने सुंदर सुंदर प्रश्न होते हैं। तो ये दूसरी बात है कैसे प्रश्न करने चाहिए। विदुर जी ने इस अध्याय में नाना प्रकार के प्रश्न किए हुए हैं, देख के कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विदुर जी के प्रश्न, परीक्षित महाराज के प्रश्न, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न, उद्धव के प्रश्न श्री कृष्ण से, तो ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न कभी कभी हम जब पढ़ते हैं तो सोचने लगते हैं कि इतने प्रकार के प्रश्न, कभी ये विषय वो विषय और नाना जो वैरायटी है प्रश्नों में और जो गहराई से प्रश्न करते हैं और इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि हम समझ में नहीं आता कि हम कैसे ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। भागवत क्लास में हम बैठते हैं तो शायद एक दो तीन प्रश्न हमारे मन में आते हैं, लेकिन यहां देखिए विदुर जी एक के बाद एक लगातार एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न जिससे बोलने वाले जो वक्ता होते हैं उनको प्रेरणा मिल रही है। यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विदुर के प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय मुनि दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे, केवल प्रश्नों को सुनकर। तो जो प्रश्न करता है उसका कर्तव्य होता है कि जो भी बैठे हैं और जो वक्ता हैं उनका आनंद बढ़ाएं, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रश्न करने वाले की। तो इसलिए उसे बहुत सोच समझकर प्रश्न करना चाहिए, यूं ही धाड़ करके प्रश्न नहीं करना है, लेकिन सोच समझकर, जिस प्रकार से वक्ता को भी सोच समझकर बोलना होता है, हर समय देश काल पात्र बहुत चीजों को सोचकर देखकर बोलना पड़ता है वक्ता को, उसी प्रकार से पूछने वाले को भी बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। तो ये है वक्ता की जिम्मेदारी और जो है प्रश्न करने वाले की जिम्मेदारी। लेकिन बाकी जो है श्रोतागण उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है नहीं, क्योंकि वक्तागण अगर प्रामाणिक न हो तो बेचारा बोलने वाला क्या बोलेगा, सोचेगा कि अरे क्या है। अगर मान लीजिए सब श्रोतागण इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई बीच में बातचीत कर रहे हैं, कोई सो रहे हैं, तो उसको भी उत्साह नहीं होगी। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका मन कहीं और है तो आपको बोलने में रुचि नहीं होगी, तो नेचुरल है। इसीलिए जो भी श्रोतागण हैं अगर ये भगवत कथा का जो वास्तव में लाभ उठाना चाहिए तो सुनने वालों श्रोतागण को भी बहुत आतुर रहना चाहिए सुनने के लिए, कि वक्ता को ऐसे लगना चाहिए कि वो हर शब्द को सुन रहे हैं आतुरता से। भले ही वक्ता इतना योग्य न हो लेकिन वक्ता तो आखिर में कृष्ण कथा बोल रहा है, तो हर एक श्रोतागण को ऐसे आगे उत्साह से बैठना चाहिए ताकि बोलने वालों को और प्रेरणा मिल जाए बोलने के लिए। और ये एक सेवा है, जो भी श्रोतागण भागवत क्लास में बैठते हैं भगवत कथा में बैठते हैं वो सेवा करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सेवा करते हैं, क्योंकि श्रवण करते हैं हरि कथा का श्रवण करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, वो वक्ता के लिए एक सेवा कर रहे हैं क्योंकि वक्ता को प्रेरित कर रहे हैं। तीसरी बात, जो पूछ रहे हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो बोलने वाला भी अच्छा होता है, पूछने वाले को भी प्रेरणा मिलती है अच्छे अच्छे प्रश्न करें, और बाकी जो श्रोता जो बैठे हुए होते हैं वो अन्य श्रोतागण की ओर भी सेवा करते हैं। क्योंकि एक आदमी सो जाता है, दूसरा उसको देखता है तो उसको भी नींद आती है। नेचुरल है कि नहीं? ये हम देखते हैं जब आप देखिए, जब योनिंग को क्या बोलते हैं, जम्हाई बोलते हैं ना, जम्हाई। एक आदमी जम्हाई करता है, आप देखिए नेचुरली आपके मुंह में आएगा, न जाने कहां से आपको नींद नहीं आ रही है, फिर भी आपको आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक आदमी को नींद आ रही है, धीरे धीरे हमको भी नींद आती है। तो अगर हम बहुत आतुरता से हम सुन रहे हैं, ठीक से बैठ रहे हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं, अरे सब लोग बैठे, हमको भी बैठना चाहिए। ये भी सब नेचुरल चीजें हैं, तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं, वक्ता, प्रश्न करने वाले और श्रोतागण, तीनों प्रामाणिक हो, तो वास्तव में भगवत कथा का रस का पान होगा, भगवत कथा का रस का जो है अमृत बहने लगेगा, तीनों जन अगर प्रामाणिक हो तो। तो तीनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये है पद्धति भगवत कथा करने की, ये कल्चर है वैदिक संस्कृति, साधुओं के बीच में ऐसे कल्चर हुआ करता है कि किस प्रकार से भगवत कथा करनी चाहिए। तो जो श्रोतागण होते हैं, जब सुनते हैं तो इनको इतना अच्छा लगता है कि वो इसको बंद नहीं करना चाहते हैं, और भी प्रोत्साहन देते रहते हैं वक्ता को। जैसे जो मुनिगण, ऋषि मुनिगण इकट्ठे हुए थे वहां पर नैमिषारण्य में, तो वो बोलने लगे कि वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहने लगे कि आप बोलते रहिए, आप रुकिए नहीं, ये सोचते हुए कि हम थक जाएंगे। जिनको रस का ज्ञान हुआ है, जिनको भगवान के कथाओं में सुनने का जो की रुचि जो लग गई है, तो ऐसे लोगों कभी ऐसे लोग कभी थकते नहीं हैं। वयम तो नो वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, आप बोलते जाए कि भी हम थके हुए नहीं हैं, हर पद पर हम ये स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इसलिए आप बोलते जाइए बोलते जाइए। हाँ, हमारे मंदिरों में सीमा होता है, समय होता है, है समय के अनुसार बंद करना पड़ता है, प्रसाद का समय हो जाता है, इसलिए वक्ता को भी देखना पड़ता है, है ना। तो ये सब चीजें हैं, कभी कभी मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में एक इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि प्रिय वक्ता, ठीक 9 बजे कृपा करके प्रवचन को समाप्त करें, है ना। तो लेकिन ये आजकल हम हमारे ये जीवन में रहते हुए, ऐसे शहर के जीवन में रहते हुए, हमें नाना प्रकार के नियम लगाने पड़ते हैं, वो भी जरूरी होते हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवत कथा होती है, जैसे नैमिषारण्य में हुआ था, जैसे गंगा जी के तट पे हुआ था सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, तो उसमें कोई अंत नहीं है, वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, किसी को अंत नहीं पड़ता। कल लगता है कि कब टाइम कैसे पास हो रहा है। जैसे मन में आता है घटना चैतन्य लीला से, प्रद्युम्न मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे भक्त भी थे। वो एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास में आए और कहने लगे कि मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं क्या कृष्ण कथा सुनाऊंगा, कृष्ण कथा सुनाने वाले तो वहां बैठे हैं रामानंद राय, रामानंद राय से जाकर कृष्ण कथा सुनो। तो वहां गए प्रद्युम्न मिश्र। जब प्रद्युम्न मिश्र वहां गए तो उस समय रामानंद राय जो हैं वो एक बहुत विचित्र और अद्भुत प्रकार के कार्य कर रहे थे। वो दो देवदासियों को जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कराने के लिए सिखा रहे थे, जगन्नाथ वल्लभ नाटक। तो नाना प्रकार से उनका संग करके वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, किस प्रकार से ये नाटिका में एक्ट करना चाहिए, कैसे नृत्य करना चाहिए, कैसे भाव को प्रकट करना चाहिए, और इस प्रकार से बहुत एक अलग से जगह में वो उनका संग कर रहे थे। तो काफी देर वहां बैठे प्रद्युम्न मिश्र। फिर उन्होंने उनके सेवक से पूछा कि राय रामानंद जी कहां पर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फलाना फलाना चीज कर रहे हैं, इस प्रकार से देवदासियों के साथ में वो उनको सिखा रहे हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो इनके पास में कृष्ण कथा करने आया था लेकिन ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो फिर भी इंतजार किए, जब राय रामानंद आए तब तक काफी समय हो चुका था। तो रामानंद राय ने जब उनको देखा तो प्रणाम किया और कहने लगे कि मुझे पता नहीं था कि आप आए हुए हैं, वरना मैं सारे काम छोड़कर आपके साथ में आता था, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस समय प्रद्युम्न मिश्र ने देखा कि काफी लेट हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं केवल आपका दर्शन करने आया था, अब मुझे वापस जाना है। तो चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास में, वापस चले गए। तो वापस चले गए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुछ कृष्ण कथा हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रद्युम्न मिश्र ने वर्णन किया कि क्या हुआ। तो उस समय प्रद्युम्न मिश्र ने सोचा होगा शायद मन में कि अब चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे कि मेरे भक्त ने ऐसे किया। लेकिन इसका विपरीत, उसका उल्टा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ऐसे गुणगान करने लगे जैसे उनको पांच मुंह हो, रामानंद राय के, कि देखो रामानंद राय की भक्ति की कोई सीमा नहीं है, केवल रामानंद राय ही ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कार्य कर सकता है। मैं तो अगर केवल एक स्त्री का नाम भी लेता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है, लेकिन रामानंद राय ये ऐसे हैं जो इतने इनका मन दृढ़ है, जो शांत है, प्रशांत है, कृष्ण भक्ति में इतना मग्न है कि ऐसे नवयुवती देवदासियों की सेवा करते हुए भी उनका मन इतना भी विचलित नहीं होता है। ये है हमारे राय रामानंद की महिमा। इस प्रकार से उनकी महिमा का वर्णन करने लगे और फिर उन्होंने प्रद्युम्न मिश्र से दोबारा आज्ञा दी कि फिर से जाओ रामानंद राय के पास और इस समय ठीक जाना जब वो सभा में बैठे हैं और उनसे कृष्ण कथा सुनना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है जिससे वो शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए रामानंद राय वास्तव में कायस्थ थे, वो शुद्ध प्रकार के माने जाते थे। अब प्रद्युम्न मिश्र वास्तव में एक पवित्र शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे शुद्ध ब्राह्मण को एक शूद्र से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेज दिया। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में वो खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ और सन्यासी ब्राह्मण थे, लेकिन खुद जाकर वो कृष्ण कथा सुनते थे रामानंद राय से। हर समय रामानंद राय को जाके प्रश्न करते थे कि कहिए आपसे हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, कुछ बताइए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु साबित करना चाहते थे कि वास्तव में जय कृष्ण वेत्ता तय गुरु होए, कि जो कृष्ण का सत्य जानता है, तत्व जानता है, वही गुरु है। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न मिश्र को भी उन्होंने वहां पर भेज दिया। तो जब रामानंद राय ने देखा कि प्रद्युम्न मिश्र आए हैं वहां पर तो बहुत खुश हो गए और उस समय कहने लगे कि कल आपकी मैं सेवा नहीं कर पाया, कह लीजिए कि क्या मैं सेवा आपकी कर सकता हूं। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो किस विषय में मैं कृष्ण कथा करूं? तो उन्होंने बताया कि मैं तो ये योग्य नहीं हूं आपको बताने के लिए कि कौन से विषय पर आपको चर्चा करनी चाहिए, जो विषय आपको ठीक लगे उसी विषय पर आप चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी विषय पर आप चर्चा करेंगे रस तो बहने लगेगा, तो आप किसी भी विषय पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से जब प्रेरित हुए प्रद्युम्न मिश्र की आतुरता को देखकर रामानंद राय को बहुत आनंद हुआ और ऐसे हिलने लगे जैसे एक भीषण सागर जो है वो जब हवा आती है तो किस प्रकार से हवा सागर हिलता है, वैसे उनके हृदय जो है वो हिलने लगा रस के, हम हिंदी में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब रस के विकार से उनका हृदय जो है वो फिर उत्तेजित होने लगा। हिलोने होने लगा। तो उस प्रकार से रामानंद राय फिर बोलने लगे और एक के बाद एक वो अपने आप को प्रश्न करने लगे और उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने लगे और ऐसे जवाब सिद्धांत से पूर्ण रस से पूर्ण भरे हुए, और फिर से और एक प्रश्न अपने आप को पूछते, फिर उसी प्रश्न का जवाब देते, और फिर प्रश्न करते, फिर जवाब देते।
अगर है उसमें कैसे आप ऊपर ले जाएंगे किसी को तो क्या होगा। उस प्रकार से प्रद्युम्न मिश्रक ऐसे आनंद की लहरों में इधर उधर इधर उधर घूम रहे थे, और उनको पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। सुबह बीत गया, दोपहर बीत गई, शाम बीत गया, और फिर जब शाम हो गया तो उनके सेवक आके कहने लगे, अब दिवस का अंत हो गया है। उस समय रामानंद राय ने कहा, हाँ, कि अब हमें कथा समाप्त करनी चाहिए। फिर प्रद्युम्न मिश्र उनके चरण कमलों में पड़े और कहने लगे, मैं आपने जो ये कृष्ण रसामृत का पान किया है, कराया है मुझे, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। मैं इतना कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ कहते हैं ना, कि मैं किस प्रकार से मेरी कृतज्ञता का को व्यक्त करूं मैं समझ नहीं सकता हूँ। फिर प्रद्युम्न मिश्र उसी भाव में भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहने लगे कि आपने मुझे ऐसे कृष्ण रसामृत का पान कराया, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। तो इस प्रकार से जब वास्तव में कृष्ण कथा होती है तो समय की कोई सीमा नहीं होती है, देश काल पात्र की कोई सीमा नहीं होती है, बस ये रस के लहरें जो हैं बहती रहती हैं, बहते रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें बहती रहती हैं, बहते रहती हैं। आप समुद्र के बीच में जाइए, आपको कोई लहरों का अंत नहीं दिखाई पड़ेगा, हर जगह लहरें ही लहरें हैं। ऐसे लगता है कि बस लहरें चल ही रही हैं होराइजन तक, दूर तक। तो इसी प्रकार से वास्तव में कृष्ण कथा होती है। तो देखिए, रामानंद राय जी ने भी जब खुद बोला, मोनोलॉग था वो, डायलॉग नहीं था, मोनोलॉग था, फिर भी प्रश्न जवाब किए, सवाल जवाब किए, अपने आप प्रश्न किए, अपने आप उत्तर दिए। तो इस प्रकार से जब प्रश्न होते हैं तो जो बोलने वाले होते हैं उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है, सुनने वाले होते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से भक्त जब एकत्र होते हैं तो कृष्ण की कथा ही तो करने वाले हैं, और क्या चर्चा करेंगे। सुत गोस्वामी कहते हैं, नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं सुत गोस्वामी से, कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो बहुत परम भक्त हैं, इसका कोई संदेह नहीं है, और महाराज परीक्षित वो तो विष्णु रात है, साक्षात विष्णु ने उनको रक्षा की थी उनके माँ के गर्भ में। तो ये दोनों भगवान के परम भक्त हैं। तो जब दो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मिलते हैं तो किसके बारे में चर्चा करेंगे, कृष्ण के बारे में ही तो चर्चा करेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि ये दोनों परम भक्तों ने मिलकर कृष्ण के बारे में चर्चा ही की होगी, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बारे में इन्होंने क्या चर्चा की। कृष्ण भक्त मिलेंगे, कृष्ण की चर्चा होगी। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी एक बार एक जगह टीका में लिखते हैं, उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, भक्तों से में सखा चीति, और साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हैं। तो दो भक्त जब मिलते हैं और कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, तो जब स्वयं कृष्ण और उनके भक्त मिलते हैं तो भक्ति के अलावा कोई और विषय हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में भगवत गीता का विषय क्या होना चाहिए, केवल भक्ति होगा, और क्या हो सकता है। ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, अष्टांग योग नहीं, और कुछ नहीं, केवल भक्ति। जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ कृष्ण के भक्त होते हैं, वहाँ भक्ति तो होना ही है, और कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो नाना प्रकार के टीकाकार होते हैं, जो मायावादी होते हैं या अन्य प्रकार के दर्शनों को जो स्वीकार करते हैं, वो भगवत गीता से भक्ति के अलावा कोई और ही चीज निचोड़ निकालते हैं। लेकिन वास्तव में हमें जानना है कि जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ कृष्ण होते हैं, वहां तो कृष्ण भक्ति की ही बात होगी, कृष्ण की ही बात होगी, और कोई भी चीज की बात नहीं होगी। ये कथा, ये हमारे एक फेवरेट कथा है, हम हर बार सुनाते रहते हैं, कृष्ण कथा। जो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो है अलवर की कथा। आप जानते हैं ना, श्री संप्रदाय में दक्षिण भारत में अलवर हुए हैं महान, 12 अलवर, उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध हैं कुलशेखर, जिनकी लिखी हुई ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र, जो हमारे इस्कॉन में भी पब्लिश की है। प्रभुपाद जी ने भी इसके टीका शुरू की थी, फिर जब समाप्त नहीं कर पाए फिर सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने टीका को कंटिन्यू किया। तो इनमें से आलवार कई हुए हैं, तो इनका जो मुख्य स्थान है वो है श्रीरंगम तमिलनाडु में। तो वहां ऐसा हुआ, एक दिन एक आलवार वहां जो मंदिर में गुफा टाइप का जगह है वहां में बैठकर वो भजन कर रहे थे अपना। तो उस समय वर्षा हुई, जब वर्षा हुई तो दूसरे अलवर वहां आए। अलवर जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक और आलवर अंदर है, तो उन्होंने पूछा कि आप तो बैठे हुए हैं, एक आदमी को बैठने के लिए, आप सोए हुए हैं, एक आदमी को सोने के लिए जगह है तो दो आदमी के लिए बैठने के लिए जगह है, तो हमें भी जगह दीजिए। ठीक है भाई आ जाइए। तो दो आ गए, दो अलवर वहां आ गए तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे। तो तीसरे अलवर वहां पे आ गए, कहने लगे यहाँ दो अलवर को बैठने के लिए जगह है तो तीन को खड़े होने के लिए जगह है, तो हमको खड़े होने के लिए जगह दे दीजिए। ठीक है आ जाओ। तो तीन लोग वहां इकट्ठे हो गए, जगह बहुत कम था, तो तीन लोग ऐसे खड़े हैं जैसे रेलवे ट्रेन में हमारे खड़े होते हैं ना जाते हैं, लेकिन रेलवे ट्रेन में जब खड़े होते हैं तो क्या बात करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अरे पैर इधर करो, अरे मेरे पैर पे क्यों, ऐसे वैसे झगड़ा करते हैं। लेकिन ये अलवर क्या बोल रहे थे, कृष्ण के बारे में बोल रहे थे। लेकिन उस बार वहां पास में एक और व्यक्ति खड़े थे, वो बाहर खड़े थे जी, उनको उनसे सहन नहीं हुआ, उनसे रहा नहीं गया, सोचे जगह कम है फिर भी मुझे वहां जाकर ये कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। वो कौन थे, श्री कृष्ण साक्षात। श्री कृष्ण देख रहे हैं मेरे भक्त वहां हैं, मुझे किसी न किसी तरह घुस जाना चाहिए वहां पर। तो तीन आलवर सुन रहे कि तीन लोग तो हैं, चौथे लोग कहां से आ गए, कौन है। तो देख रहे हैं कि साक्षात कृष्ण, और चारों लोग कृष्ण कथा बक बक बकोल रहे, बोलते रहे। दिन भर चलता गया उनका कृष्ण कथा, वो उनको समय पता ही नहीं चला कि ये कृष्ण है कौन है, और फिर कैसे समय बीत रहा है, बारिश बंद हो गई कि नहीं हो गई, उनकी जो कथा चालू होते रही। तो इस प्रकार से ये कृष्ण कथा में जब रस आता है तो कृष्ण के भक्त बोलते जाते हैं। जब कृष्ण के भक्त होंगे तो साक्षात वहां कृष्ण अवश्य होंगे, ये इसका तात्पर्य है। कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। कि क्योंकि मैं हमेशा मेरे भक्तों के चित्त में निवास करता हूँ और वो मैं उनका प्राण धन हूँ, इसीलिए जब भी भक्त लोग एकत्र होते हैं कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च, मेरे बारे में ही कथा करते हैं, परस्पर मेरे ही बारे में कथा करते रहते हैं और किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, और इसी चीज में आनंद लेते हैं, तुष्यंती च रमंती च, बिल्कुल कृष्ण कथा में रम जाते हैं। तो ऐसे रमने वाले लोगों को भक्त कहते हैं। तो यहां मैत्रेय मुनि जो हैं बहुत आनंद की अवस्था में हो गए हैं। तो क्यों आनंदित हो गए हैं, क्योंकि भक्त के लिए स्वाभाविक है, जब कृष्ण भगवान के भक्त को कृष्ण के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत आनंद की अवस्था में हो जाता है, ये नेचुरल है। अभी एक जो अभक्त होते हैं वो भी बोलने के लिए जब उनको चांस मिलता है बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से उपदेश अमृत में ये टीका की है कि किस प्रकार जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो बक 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 पूरा दिन बोलना चाहते हैं एक मेंढक की तरह। मेंढक सोचता है कि मेरी वाणी बहुत मधुर है, और स्त्री मेंढक को आकर्षित करने के लिए वो खड़ा रहता है और बक बक करता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो जब अपनी आवाज कर रहा है तो केवल सांप को आकर्षित कर रहा है और सांप आके उसको खा लेता है। तो उसी प्रकार से जो भौतिकवादी लोग हैं जो बार बार बोलने के लिए उत्साहित होते हैं वो केवल मृत्यु रूपी जो सांप है वो आके उनको केवल खींच रहा है अंदर, वो गल रहा है उनको अंदर। लेकिन भक्त की जो उत्साह होता है बोलने के लिए वो ऐसा नहीं होता है, वो उनको अंदर ही अंदर से कृष्ण भक्ति का जो बल है वो उनको प्रेरित करता है। ये कृष्ण भक्त का स्वभाव होता है कि जहां भी वो जाए वो कृष्ण का गुणगान करने का इच्छुक होता है। एक जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में परिभाषा देते हैं भक्त की। भक्त की परिभाषा हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। कई बार प्रश्न लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि भक्त, ये भक्त कौन होता है, भक्त की परिभाषा क्या है। भक्त की परिभाषा कई होती है। जैसे विद्यार्थी, अगर हम पूछें कि विद्यार्थी कौन है, जो सीखता है, लेकिन पहले कक्षा में होता है वो भी विद्यार्थी है, दसवीं कक्षा में होता है वो भी विद्यार्थी है, जो एमए कर रहा है वो भी विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में अंतर होता है ना। उसी प्रकार से भक्तों में भी अंतर होता है। सब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन उनके भक्ति में अंतर होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त वो है जो दिव्य, जो चेतना दिव्य, जो दिव्य आनंद के प्रभाव में कृष्ण के गुणगान करता है। डिवोटी इज वन हु अंडर द डिक्टेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी ग्लोरीफाइज कृष्ण। मतलब भक्त वो है जो हिंदी में कैसे, जो दिव्य जो भाव हो रहा है उसके बल से जो भगवान की गुणगान करता है वो है भक्त। मतलब भक्त का धर्म ही है कृष्ण का गुणगान करना, भक्त का काम ही है, भक्त का स्वभाव है। चांस दीजिए भक्त शुरू हो जाएगा, है ना। ये है जिस प्रकार से भौतिकवादी लोग चांस देने से बोलना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भक्त भी चांस मिलने पर शुरू हो जाते हैं कृष्ण कथा करने के लिए। मौन व्रत से इतना रुचि नहीं रखते हैं कृष्ण भक्त, क्योंकि देखते हैं कि कृष्ण की गुणगान करने के लिए चांस मिल रहा है, चलो बोलो, बोलते जाओ, है ना। तो इस प्रकार से एक उत्साह होता है भक्त को बोलने के लिए। इसलिए मैत्रेय मुनि भी यहाँ उत्साहित हो गए हैं ऐसे सुनकर कि विदुर जी जो है कितने उत्साह से बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि भी उत्साहित होकर इनके जवाब दे रहे हैं, और जवाब क्या देंगे वो हम अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो कथा यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त ना करने की वजह से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आशा है कि आप सब समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा था। कोई टीका है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि अगर मैं कृष्ण का कीर्तन कर रहा हूँ या गुणगान कर रहा हूँ और हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर सुने, तो ये क्या अहंकार का लक्षण है या नहीं है? ये डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं ताकि वो सुने कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितने श्लोक आते हैं, मैं कितने सुंदर तरीके से मैं बोल सकता हूँ और लोगों के मन को मैं आकर्षित कर सकता हूँ, या मेरा कीर्तन करने का ढंग कितना अच्छा है, कितनी मधुर मेरी वाणी है, बोली है, तो फिर वो अहंकार है, वो अज्ञान है। लेकिन अगर हम वास्तव में हृदय से चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आकर सुने, कृष्ण की वाणी को सुने, ये शब्द ब्रह्म है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण की कथा सुनेंगे तो उनके, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो भी कृष्ण भक्ति में प्रेरित हो जाएंगे। अगर ये हमारी भावना है तो फिर ये अच्छा है, ये सही है। तो ये भावना की अनुशीलन करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब हम प्रचार में जाते हैं हम देखते हैं कि क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, दोनों हमारे अंदर होते हैं, पहले का भी मिलावट तो अवश्य होता है ना। जो भी अपने हृदय में झांक के देखेगा माइक्रोस्कोप से, जो सही तरह से देखेगा
पहले जो बात है उसका भी थोड़ा कुछ नजर तो आएगा, कम से कम हमको तो बहुत कुछ दिखता है। तो क्या होता है कि कृष्ण कथा कहने मात्र से ही ये भी शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे से वो जो भावना होती है कि मेरे को लोग सुनने आए, वो भावना भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन उपाय है कि हम केवल कृष्ण कथा बोले जाएं, कोई बात नहीं, हमारे अंदर अनर्थ है, लेकिन बोले जाएं और सुनते जाएं। ऐसे नहीं कि केवल हम बोलने का स्थान लें, ये भी एक परीक्षा है। जो भक्त सुनना नहीं चाहता है, अपने आप को नीचे लेकर सुनने का स्थान नहीं लेना चाहते, इसका मतलब है वो केवल बोलना चाहता है, ये अहंकार की बात है। तो भक्त को हमेशा एक निम्न श्रेणी लेकर श्रवण करने के लिए तैयार होना चाहिए और किसी से भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए भक्त को। ऐसा नहीं कि केवल जो बहुत सीनियर भक्त हैं या बहुत जूनियर भक्त हैं उनसे नहीं सुनना, ऐसी बात नहीं है। जहां कृष्ण कथा होती है तो वहां सभी को सुनना चाहिए। हमारे जन निवास प्रभु मायापुर में, वो जब बंगाली में प्रवचन होता है, एक नया नया भक्त भी देता है, वो जाके वहां बैठ जाते हैं। हालांकि उनको बंगाली शायद समझ में नहीं आती है, लेकिन वो ये कभी नहीं देखते हैं कि अरे ये इतना नया भक्त है, अभी इससे क्या सुनेंगे, या बंगाली में है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शुद्ध करेगा। तो ये हमारी भावना अगर होगी तो हर जगह जाके हम कृष्ण कथा बोल सकते हैं और फिर कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी वो प्रकार की अहंकार न हो। और खास करके जब भक्त कृष्ण कथा करने लगता है तो हो सकता है कभी कभी लोग आके कहें कितने सुंदर प्रवचन आपने दिया, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, लोग आके शायद हमारा पैर भी छुएंगे, ऐ लोग आके फिर हमारे पीछे आएंगे, हो सकता है। उस समय हमें खबरदार रहना है, होशियार रहना है कि ये किसके लिए है, ये हमारे गुरु परंपरा के लिए है और कृष्ण के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसी भावना अगर हमारे दिल में हर समय बनाए रखेंगे तो ये पहले प्रकार की जो भावना है उसके शिकार हम नहीं हो जाएंगे। इसलिए भक्त को हमेशा होशियार और सावधान सतर्क रहना चाहिए इस भावना से दूर रहने के लिए। तो फिर हम जो कृष्ण कथा में हमारी जो आतुरता है वो अहंकार नहीं होगी, वो भी एक भक्ति ही होगी। इसका मतलब है जब कृष्ण कथा आपको मिल गया है तो कृष्ण कथा के अलावा और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, और ज्ञान मार्ग की डिस्कस किया बात नहीं है, और ज्ञान की बात नहीं, कर्म की बात नहीं, अष्टांग योग की बात नहीं, इन चीजों की बात नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवद गीता क्या है, कृष्ण कथा ही तो है ना। और भागवत और गीता में अंतर क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दो प्रकार के कृष्ण कथा होते हैं, एक है कृष्ण ने बोली हुई कथा और दूसरे है कृष्ण के बारे में कथा, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवद गीता कृष्ण ने बोली हुई कथा है और श्रीमद् भागवत कृष्ण के बारे में कथा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवद गीता जहां समाप्त होता है वहां श्रीमद् भागवत शुरू होता है, तो इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गीता भागवत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों हमें प्रेरित करते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और दोनों हमें कृष्ण भक्ति के बारे में ही बताते हैं। दोनों कृष्ण और कृष्ण के भक्त के बीच में चर्चा है। हाँ जी प्लीज।
विज्ञान जो है वह भागवतम में, विज्ञान का मतलब क्या है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सके, जो अनुभव कर सके, और वह भक्तों की कथा के द्वारा, अलग अलग परिश्रमों की कथा के द्वारा हमें बताया जाता है कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, वो आचरण और ज्ञान दोनों मिलेंगे तब वो ज्ञान एवं सदुपयोग यज्ञात्मा में है भूलो ज्ञान सदुपयोग जो जानने के बाद में और कुछ जानने की आवश्यकता
सही बात है।
मुनि प्रभाव है मुनि प्रभाव है तो गुरु प्रभाव गुरु जी के लिए कहते हैं और मुनि प्रभाव लैटर मुनि के लिए कहते हैं। तो जैसे क्या उसमें युद्ध समाप्त हो गया तो महाभारत का किसान लोग भीष्म आदि को गुरु प्रधान कहे जाते हैं और उस समय क्या दूसरे और अन्य मुनि मुनि थे जैसे विद्यास मुनि मिला और दोनों को इसमें प्रधान शब्द क्यों लगा है प्रधान क्यों कहते हैं
विदुर को और मैत्रेय मुनि को प्रधान उनके बारे में प्रधान शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। हाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध इस समय तो समाप्त हो चुका था और इतना ही नहीं यदुकुल भी द्वारका से भगवान के धाम में जा चुके थे और उस समय विदुर जी आए थे तीर्थ यात्रा में गए हुए थे तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र में ये सुन लिया कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है तो उनको मालूम था कि सारा वंश अभी खत्म हो चुका है। लेकिन जब उन्होंने उद्धव से वो मिले तो प्रश्न करने लगे और फिर उद्धव ने बाद में उनको मैत्रेय मुनि के पास में भेजा तो इस समय कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है और यदुवंश भी अपने आप को एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं। प्रधान शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि दोनों महान हैं अपने अपने जगह में दोनों महान हैं और इस समय धृतराष्ट्र तो थे और पांडव भी थे लेकिन कुरु प्रधान एक सम्मान का सम्मान से उनको संबोधित करने के लिए वो तो वरिष्ठ है ही विदुर जी वो तो धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं पांडवों के पिता समान हैं तो सीनियर मोस्ट में से हैं और मैत्रेय मुनि भी बहुत वरिष्ठ हैं अपनी उम्र में भी वरिष्ठ थे इसलिए उद्धव ने शिक्षा देने से इनकार किया विदुर जी को और कहा कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए वो मेरे पिता के समान हैं वो आपके उम्र के बराबर हैं क्योंकि विदुर जी उद्धव से बहुत उम्र में ज्यादा थे तो दोनों बहुत वरिष्ठ हैं और दोनों आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत योग्य हैं इसलिए उनके प्रति प्रधान शब्द इस्तेमाल किया गया। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की।